तो सब भक्तों का स्वागत है आज एकादशी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में। भागवत शब्द जो है ग्रंथ भागवत को भी कहते हैं और व्यक्ति भागवत को भी कहते हैं। जो लोग भागवतम का भगवद गीता का आचरण अपने जीवन में करते हैं वो लोग भी भागवत कहलाते हैं। और भगवान से जुड़ी हर चीज वो भी भगवान की ही समान शक्तिशाली होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे महाभागवत हैं जिन्होंने पूरे संसार भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और उनके जीवन का एक एक क्षण केवल कृष्ण भक्ति और कृष्ण के प्रचार हेतु ही लगा। जब किसी व्यक्ति को कोई अमूल्य चीज प्राप्त हो जाती है तो सबसे पहले वो चाहता है ये मैं किसे दूं, पहले तो अपने लिए और फिर अपने परिवार वालों के लिए, फिर रिलेटिव्स के लिए, फिर देश के लिए। जब प्रभुपाद जी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, वैसे तो ये बोलना ठीक नहीं है क्योंकि प्राप्त हुई, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी एक राजदूत हैं आध्यात्मिक जगत से। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एक विशेष आवेश उनको दिया गया था। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से दीक्षित हुए और फिर उन्होंने योजना बनाई इस कार्य को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने भी जो है अपने उद्धार का ही नहीं सोचा। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग भक्ति में लग जाते हैं या अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो उन लोगों को कुछ लोग इस प्रकार भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये लोग केवल अपने व्यक्तिगत मोक्ष की ही चिंता कर रहे हैं। व्यक्तिगत मोक्ष मतलब, हां सच में संसार में दुख हैं, तकलीफें हैं, समाज में इतना तनाव है, तो कुछ लोग जो हैं इस तनाव से, इन समस्याओं से दूर भागते हैं, संघर्ष नहीं करते, लड़ते नहीं, और फिर अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए वो क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, है ना। इस प्रकार का समाज बोलता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है और भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है चाहे किसी भी कारण से, तो वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है और वो व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति नहीं। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन इस समाज के रीति रिवाज, नैतिकता, सोशलाइजिंग जो भी इस सारी चीजों में खरा उतरता है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्य जो हैं एक श्रम की तरह ही रह जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश जेल के अंदर आ जाए तो जेल के अंदर वो सभी नियमों का बेशक सुंदर ढंग से पालन करता हो, अच्छा आचरण भी पेश करता हो, सब कुछ ठीक करता हो, लेकिन फिर भी जेल में ज्यादा समय बिताना अपने आप में क्या है, एक पनिशमेंट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस जेल से बाहर निकलता है, बाहर निकलने का प्लान करता है या जल्दी से उसकी छुट्टी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ये बोलकर बोलें कि अरे इसने तो देखो जेल के सारे नियम नहीं पालन करे, इतने सारे लोग हैं, इनके उद्धार के लिए क्यों नहीं बैठा, चला क्यों गया जल्दी जेल से बाहर, तो ऐसा ठीक नहीं है। तो शास्त्र में कहा गया जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है और इस समाज के सोकल रीति रिवाजों को और संन्यास इत्यादि ले लेता है, तो अगर वो व्यक्तिगत मोक्ष के लिए भी गया है तो नुकसान नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सारी चीजें ठीक ढंग से कर ली, सारे रीति रिवाज ढंग से फॉलो कर लिए लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करी तो उसको बताया गया श्रम एव ही केवल, उसको फिर से आना पड़ेगा, फिर से नाना प्रकार की योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जैसे महाभागवत इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल व्यक्तिगत मोक्ष की चिंता नहीं की, इन्होंने क्या किया कि उन सब जीवात्माओं के लिए भी प्रयास किया जो संसार में संघर्ष कर रही, और इसलिए पर्सनल कंफर्ट्स छोड़कर, वृंदावन जैसे धाम को छोड़कर, अमेरिका जैसे धाम में न्यू वृंदावन खोला, न्यू द्वारका सिटी खोली, मतलब हर तरह का धाम प्रभुपाद जी ने विदेशों में भी बना दिया। और वहां के जो कंडीशन सोल्स थे, जो लोग इस प्रकार के कार्यों में लगे थे कि पूछो मत, वहां पर जाकर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया और उन सबको इस प्रकार शुद्ध किया कि आज वो सब लोग पारस पत्थर की तरह चमक रहे हैं। कल रात को किसी से बात कर रहे थे कि जिस प्रकार एक पारस पत्थर किसी भी लोहे से टच करने पर उसको स्वर्ण बना देता है, सोना बना देता है, लेकिन इस आंदोलन में प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के ऐसे पारस पत्थर हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कि वो जिसको भी छूते हैं, जिसे भी टच करते हैं, उसे भी क्या बनाते थे? पारस पत्थर बनाते, सोना नहीं बनाते थे। क्योंकि पारस पत्थर का मतलब क्या है कि अब वो पारस पत्थर भी जब दूसरे को टच करेगा उसको क्या बनाएगा? सोना नहीं, उसको भी पारस पत्थर ही बनाएगा। तो जब आपको ज्ञान हो गया कृष्ण भक्ति का, आपको पता चल गया आत्म साक्षात विज्ञान की महत्वपूर्णता का, तो व्यक्ति चुप थोड़ी रहेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ बोलेगा। और उसका जीता जागता जो व्यक्ति चलता व्यक्ति है, वो अपने आप में एक ऐसा आदर्श पेश करता है समाज में कि उसको देख के लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति भी इस प्रकार कृष्ण भावना भावित लोगों के मध्य में आता है, वो क्या बन जाता है? प्रचारक बन जाता है। इसलिए इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला, पृथ्वी तयाचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बुमोरना, कि पृथ्वी पे सभी नगर और सभी गांवों में जो है प्रचार होगा। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इस संस्था में जो भक्त भी जुड़ रहे हैं वो धीरे धीरे प्रचारक ही बन जाते हैं। अगर किसी को ज्यादा कुछ नहीं आता तो अपनी मेड को सुना सुना के उसको प्रचार करके बेचारी जो अलग अलग योजनाओं के द्वारा जब गांवों से अनपढ़ लोगों को यहां लाया जाता है, उनको धर्म प्रवर्तन करके, तो जिन परिवारों में वो दूसरे नामों में हैं, तो बाद में वो यहां पर आके हरे कृष्णा चैंटिंग भी शुरू कर देते हैं, है ना? क्योंकि माता जी कहां जुड़ी हुई है, वो इस काम से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने जो सीखा है तो वो अपने घर में भी उन बच्चों को भी कराना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो भी जो है शुद्ध हो जाते हैं और अच्छा काम शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी का ये आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से जो चल रहा है, पूरे विश्व भर में जो है इतना सुंदर ढंग से प्रचार कर रहा है, और आने वाले दिनों में इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। शास्त्रों में जैसे बताया है और इवन बताया जाता है कि 10,000 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, या यूं कहें कि हरे कृष्ण आंदोलन जो है, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ये पूरे इस कलयुग में भी लगभग 10,000 तक जो है सत्ययुग रहेगा। अब इस सत्ययुग में हम देख सकते हैं कि 5,000 साल बीत गए हैं कलयुग शुरू हुए, लेकिन स्थिति क्या है कि धीरे धीरे कई बार लगता है कि वर्ष वर्ष होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम देखें एक व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया अकबर 40-45 साल पहले, लेकिन आज इसके लगभग 600 शाखाएं अर्थात केंद्र हैं, और दिन ब दिन प्रचार के जो केंद्र हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं, और इन केंद्रों से जुड़ने वाले हर व्यक्ति जो है पवित्र होता जा रहा है। और इस केंद्र का जो नाम है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। जब इसका प्रभुपाद जी ने नामकरण किया तो भी कई तरह के ऑप्शन आ रहे थे, गॉड कॉन्शियसनेस और ऐसे कुछ करके, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, रूप गोस्वामी जी को हृदय को प्रभुपाद जी ठीक ढंग से जानते थे, है ना, श्री चैतन्य मनोभिष्टम। जब रूप गोस्वामी सब कुछ जानते थे तो उन्हीं के रूपानुग जो है शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने भी जो एक पद्यावली का श्लोक है शायद, जिसमें कि उसमें बोला है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मती, तो प्रभुपाद जी ने इस सेंटेंस को उठाकर कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का नाम रखा, कि जो कृष्ण की भावना से के रस से ऐसी मति बनाने वाला आंदोलन, या ऐसा रस प्रदान करने वाला आंदोलन जो हर व्यक्ति को क्या बनाएगा, उसकी जो चेतना है पूरी तरह कृष्ण में, कृष्ण के रस में भावित रहे। तो ये शब्द वहां से प्रभुपाद जी ने लिए, तब जाके संस्था का जो है नामकरण हुआ। अदरवाइज गॉड कॉन्शियसनेस, फिर से कंफ्यूजन थी कि गॉड है कौन, इन गॉड वी ट्रस्ट, कंफ्यूजन है कि हु इज गॉड, लेकिन प्रभुपाद जी ने रखा कृष्ण भावना में, अर्थात जो भगवान है वो कृष्ण है और सर्वाकर्षक है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने कहा। तो आज के दिन इस एकादशी के पावन अवसर पर हम लोग हमेशा श्रील प्रभुपाद जी का चरित्र या उनके जीवन के जो है से संबंधित ये प्रभुपाद लीलामृत का हम लोग पठन करते हैं, तो आज भी हम लोग उसी को करेंगे। नैरोबी में एक रात बिताने के बाद श्रील प्रभुपाद और उनका दल अगले दिन एक छोटे से वायुयान से मोम्बासा पहुंचा। श्रीमान पंड्या बाहर गए थे। उनके परिवार ने यद्यपि कोई उत्साह नहीं दिखाया, पर उसने श्रील प्रभुपाद के लिए अपना घर खोल दिया। वह विशाल भवन आधुनिक ढंग से बना था। उनके कोने गोलाई लिए हुए थे, खिड़कियां पोर्ट होल टाइप की थी, और रहने का कमरा बहुत विस्तृत था जिसका बरामदा महासागर की ओर था। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर प्रभुपाद ने बेरूज सागर की ओर देखा। नीला आकाश बादलों से रहित था। सफेद रेत वाले सागर तट पर यत्र तत्र खजूर के पेड़ रखे थे। ब्रह्मानंद स्वामी को ब्रह्मानंद स्वामी और अन्यों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद ने मुझसे कहा था कि यह संसार के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। अब मैं देख रहा हूं कि उसने सही कहा था। प्रभुपाद पुरानी खांसी के साथ आए थे, लेकिन मुंबासा में सागर तट पर टहलने और धूप में आराम करने से उन्होंने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लिया। लंदन में श्याम सुंदर के साथ पाश्चात्य दार्शनिकों पर प्रतिदिन विचार विमर्श का जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, प्रभुपाद ने उसका सिलसिला बनाए रखा। क्रम से वे सुकरात से चलकर डेकॉट पहुंचे थे। श्याम सुंदर, वह कह रहा है मैं सोचता हूं कि इसलिए मैं हूं। सबसे पहले उसने मालूम किया कि मैं हूं। सत्य के लिए यह उसका सहज आधार था। उसने समय में कोई वास्तविकता सत्ता नहीं थी, रूपा जी कहते हैं, किंतु यह कोई महान ज्ञान नहीं है। बहुत पहले ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जो मैं हूं को समझते थे। इसे आत्मनम मन्यते जगत कहते हैं। एक मूर्ख सोचता है कि अन्य सभी मूर्ख हैं। मैं की पहचान करने वाला वह व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं अहम अहम एवासमम एवाग्रे, मैं आदि था और जब हर वस्तु नष्ट हो जाएगी तब भी मैं रहूंगा। हम भी कहते हैं मेरा अस्तित्व इस शरीर की रचना के पहले से था और जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी रहेगा। मैं की यह धारणा भगवान में है, यह मुझ में है, और फिर नई चीज क्या हुई। रूपा जो ही कुछ स्वस्थ हुए वे धर्मोपदेश के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मुंबासा छोटा स्थान था और नैरोबी जो राजधानी था धर्मोपदेश के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए वे नैरोबी लौट गए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जिस उम्र में थे हर समय प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य को जो है कुछ न कुछ तकलीफ होती थी, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत जल्दी स्वस्थ होते ही अपना फिर से बिजनेस शुरू कर देते थे, वो था प्रचार का या संबोधन करने का। नैरोबी सितंबर 18, 1971 में नैरोबी में श्रील प्रभुपाद ने प्रदर्शित किया कि सन्यासी को धर्मोपदेश कैसे करना चाहिए। एक महीने तक उन्होंने वैदिक परंपरा का कड़ाई से पालन किया। वे किसी भारतीय मेजबान के घर में 3 दिन से अधिक नहीं रहे, यद्यपि उनके मेजबान उन्हें अच्छे भोजन और आवास की हर सुविधा प्रदान करते थे, पर 3 दिन के बाद वे दूसरे के यहां चले जाते थे। रूपाद ने कहा कि सन्यासियों के लिए यही नियम है, यह उन्हें शरीर सुख में अधिक आसक्त होने से बचाता है और मेजबानों के लिए सुविधाजनक नहीं होता। तो यहां प्रभुपाद जी सन्यासी का धर्म बता रहे हैं कि किस प्रकार जब सन्यासी लोग प्रभुपाद जी 3 दिन वहां रुककर सेवा लेकर, क्योंकि सन्यासी जो है जब किसी के परिवार में जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है सौभाग्य होता है उस परिवार के लिए कि कोई सन्यासी उनके घर पर आए, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है उस जीवन में, क्योंकि यही एक ऐसा जीवन है जिसमें कि लाइफ का 25% हम लोगों को गृहस्थी में बिताना पड़ता है और बाकी सारे आश्रमों की क्या करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों आश्रम गृहस्थ जीवन पर ही आश्रित हैं और गृहस्थ जीवन में ही व्यक्ति को अपने परिवार को भी पालना है और इन तीनों आश्रमों की भी क्या करनी है, सेवा करनी है। और इतनी सारी जो है सेवाओं के रहते उसे भी कृष्ण भावना भावित रहना है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन को जो कि सबसे संघर्षपूर्ण जीवन होता है, ऐसे जीवन में जब भक्त लोग सन्यासियों इत्यादियों को जब अपने घर पर इनवाइट करते हैं तो उनको एक परम सौभाग्य की अनुभूति होती है। ऐसे वैष्णवों को घर में बुलाकर उनका अतिथि सत्कार कर उनकी सेवा कर वो फिर से मतलब उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी जो है इनकी सेवा कर पाए और इनकी सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होगा हम लोग इस आश्रम में ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी भगवान को स्मरण कर सके, क्योंकि सन्यासी जो लोग हैं वो तो भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए जो है बहुत बड़ा, सुखदेव गोस्वामी जी बताते थे कि वो भी इतनी दूर कहीं रुकते थे जब तक कि गायें दूध ना दे दें, इतनी देर रुकने के बाद वहां से कुछ लेकर निकल जाते थे। तो प्रभुपाद जी भी बता रहे कि 3 दिन से अधिक कहीं ना रुककर गृहस्थों के ऊपर कृपा कर वो लोग उनकी सेवा इत्यादि करते थे और फिर वहां से दूसरे परिवार में चले जाते थे। हमारे षट गोस्वामी वृंद भी एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, उसके बाद किसी दूसरे पेड़ में चले जाते थे। तो प्रभुपाद जी का कहने का मतलब है कि सन्यासियों को जो रिनाउंस उस लाइन में लाइफ में है उन्हें चाहिए कि किसी एक स्थान से क्या ना रहे, आसक्त ना रहे, क्योंकि कुछ समय बाद उस स्थान से आसक्ति होने के कारण उनका भी जो है बंधन बढ़ सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां पर इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। यूं श्रील प्रभुपाद के लिए संन्यास के इन प्रारंभिक पाठों का अभ्यास निश्चय ही अनावश्यक था, क्योंकि वे परमहंस थे जो कृष्ण भावनामृत की श्रृंखला में संन्यास का सबसे ऊंचा दर्जा था। शरीर, मन और वाणी तीनों से कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे होने के कारण वे स्वयं ही भौतिक सुखों से विरक्त थे, फिर भी अपने उदाहरण से अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वैदिक रीति का पालन किया। वे मधुकरी रीति का अनुसरण कर रहे थे। मधुमक्खी की तरह जो एक पुष्प से थोड़ा सा पराग लेती है और फिर दूसरे पुष्प पर पहुंच जाती है, केवल संक्षिप्त समय के लिए एक स्थान पर रहने के नियम से प्रभुपाद के लिए यह भी संभव हुआ कि वे अधिकाधिक परिवारों को कृष्ण भावनामृत में शामिल कर सके और ढेरों निमंत्रणों को समुचित आदर दे सके। तो यहां पर एक विशेष प्रभुपाद जी इसका जो आचरण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने यह संस्था बनाई थी विदेशी धरती पर, जहां पर कृष्ण और राम को भी जानने वाला कोई नहीं था। जो व्यक्ति कृष्ण और राम को नहीं जानता, तो वैष्णवता क्या जानेगा। तो इस प्रकार इतने बड़े गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य विदेशों की धरती में लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहां पर अपने ही शिष्यों को के विवाह भी कराए, जबकि विवाह कराना किसी सन्यासी के लिए वर्जित है, लेकिन अपने शिष्यों को उन्होंने विवाह भी कराया। इसके अलावा एक आदर्श सन्यास का आचरण दिखा रहे हैं, ताकि उनके जो द्वारा बनाए गए सन्यासी भक्त लोग हैं वो उनके जीवन से सीख सके कि एक सन्यासी को कैसे आचरण करना चाहिए। क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ भारत भूमि में आए, वृंदावन में आए, तो वहां पर कई गोस्वामीगण और जो दूसरे मंदिरों के मठाधीश हुआ करते थे, जब उन्होंने विदेशी भक्तों को संन्यास और ब्राह्मण दीक्षित देखा तो काफी आलोचनाएं भी की। इतना ही नहीं, क्योंकि ये वैष्णव जन जो थे प्रॉपर ट्रेंड नहीं थे शुरू में, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आप अपना आचरण बिल्कुल आदर्श प्रस्तुत कीजिए, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, किस प्रकार, क्योंकि क्या है कि यहां के लोग केवल हमारी गलतियां ही ढूंढेंगे, ऐसे ही होता था, और उनकी गलतियां ढूंढकर उनका उपहास करते थे। तो प्रभुपाद जी विदेशी धरती पर अपने सन्यासी शिष्यों को इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, कुकिंग तक प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से सिखाई। जब कभी प्रभुपाद जी के शिष्यगण कुकिंग कर रहे होते थे भगवान के लिए या भक्तों के लिए, तो प्रभुपाद जी अंदर चले जाते थे और देखते थे कैसे बना रहे हैं। समोसा, पूड़ियां, ये सब कभी नहीं देखी थी इन लोगों ने, लेकिन प्रभुपाद जी अपने सामने देखते थे, अपने सामने बिलवाते थे कि बेलिए, और जब कोई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी तो प्रभुपाद जी उनको कहते थे दिखाओ मैं बताऊं कैसे करते हैं, तो अपने हाथ से गोला बनाते। यहां तक कि रसगुल्ले बनाना सिखाया प्रभुपाद जी ने, और धीमी आंच पर जलाकर उनको बताते थे जब तक भूरे ना हो जाए तब तक उसको उसमें ना डालें, और उसको बोलते थे फिर इस्कॉन बुलेट, ये ऐसी गोलियां हैं जो एक बार खाए तो फिर वो कहां का हो जाए, वो कृष्ण का हो जाए। और प्रभुपाद जी कहते थे एक मर्तमान भन के इसे हमारे आश्रम के बाहर रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति अंदर आए उसके लिए फ्री हो कि ये रसगुल्ला खाए। लेकिन इसकी शर्त भी होती थी कई बार कि क्लास में भी बैठना पड़ता, जो बौरी सीट के लोग थे उनके लिए तो बड़ा मुश्किल था क्लास सुनना। वो आते थे नशे में, और नशे में रहते थे, और कई बार जब खुलती थी तो पता लगता था सामने प्रभुपाद जी बोल, खत्म कम होगा, हरी बोल होता था, थैंक यू वेरी मच होता, तालियां बजती थी, उनकी नींद खुलती थी, और तुरंत जाते थे कहां पर, इस्कॉन बुलेट खाने के लिए। तो वो रसगुल्ला उनको बहुत पसंद आता था। इतना ही नहीं, एक बार एक रथ यात्रा निकली तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद से पूछा कि पीछे बताओ कितने लोग हैं, तो लगभग 5000 लोग पीछे चल रहे थे और सड़कों पर नृत्य कर रहे थे, और बाद में धीरे धीरे ये संख्या पहुंच गई 10000 तक। प्रभुपाद ने कहा हमारे अब तक के सारे कार्यक्रमों में ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन पता चला उस रथयात्रा में अधिकतर जो थे सारे नशेड़ी थे नाना प्रकार का नशा करके पहुंचे थे, लंबे लंबे बाल और अपने सर पर मुकुट भी पहनते थे कई लोग, तो कोई मोर पंख या दूसरे तरह के पंख भी लगाकर आते थे। तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स जो हैं वो कंपेयर कर रहे थे कि ये लोग जो हैं इस प्रकार लंबे लंबे बाल कर और नाना प्रकार के वेशभूषा सज कर आए हैं, लेकिन ये हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं सड़कों पर, खूब नाच रहे हैं, तो इनको स्वीकृतियां प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि नशे में है, शायद इनको नशे की वजह से इनको ज्यादा सुख या उसकी अनुभूति हो रही होगी, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो भी नाच रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, लेकिन इनका आनंद जो है इनके आनंद से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग पहले ट्राई कर चुके थे सारी चीजें, इनको पता था कि हमारा खुश होना, हमारा आनंद में रहना इनके टेम्पररी आनंद से काफी अच्छा है। और ये जो अपने को सजा कर आए हैं, इनकी सजावट क्या, जो हमारे जगन्नाथ जी की सजावट है। तो इस प्रकार वो कंपेयर कर रहे थे कि हमारा जो जीवन है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था, जो नशा मैं देने जा रहा हूं उससे क्या होगा, यू विल स्टे हाई फॉर एवर, आप हमेशा के लिए जो है ऊपर, मतलब उठ जाओगे, दोबारा नीचे नहीं आओगे। तो उस सुख को, उस आनंद को वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो यहां पर भी प्रभुपाद जी अपने आचरण से अपने सन्यासी शिष्यों को सिखा रहे हैं कि कहां पर हमें कितनी देर रहना चाहिए और किस प्रकार आचरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी जहां भी जाते थे वहां निर्विवाद रूप से गुरु या सम्मान्य साधु माने जाते थे, तो भी वे अपने मेजबानों से घुल मिलकर अपने उनके मित्र बन जाते थे और परिवार के वृद्धों वयोवृद्ध सदस्य की भांति व्यवहार करते थे। उनके मेजबान प्रभुपाद के रहने के लिए अपने मकान का सबसे अच्छा कमरा प्राय अपना शयन कक्ष देते थे और घर की मालकिन अपने सहायिकाओं के साथ उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनाते थे। तो प्रभुपाद जी देखिए इतने एक्सपर्ट प्रीचर थे कि जिसके भी घर में जाते थे तो इस प्रकार पेश आते थे जैसे उनके घर के दादा या पिता मैं ही, है ना, सबके साथ बड़ा अच्छा सुंदर संबंध बना लेते थे। और यही संबंध लोगों को भक्ति में बने रहने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए उनको प्रेरित करता था। तो एक बड़े एक्सपर्ट प्रीचर थे। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी की छोटी सी, जिस परिवार में प्रभुपाद सबसे पहले रहे थे, नैन्सी शायद नाम था, तो उनके घर में भी जो छोटा सा शिशु है प्रभुपाद, उसके साथ भी खेलते हुए दिखाए गए चित्रों में। तो प्रभुपाद जी छोटे से लेकर हर व्यक्ति तक को जो है अपना प्रेम प्रदान करते थे। प्रकृति कृष्ण भावना में चाल ढाल प्रभावोत्पादक थी और उनका व्यवहार सदैव ही अभिजात्य पूर्ण होता था। तब भी उनके मेजबान उनकी विनयशीलता पर मुग्ध हो जाते थे। वे तेजी से नैरोबी के बहुत से परिवारों से के मित्र और वैष्णव गुरु बनते जा रहे थे। नैरोबी में प्रभुपाद का व्यवहार उनके उन थोड़े से पाश्चात्य शिष्यों के लिए शिक्षाप्रद था जो उनके साथ गए थे। एक अवसर पर एक श्रीमान देवजी धामजी ने प्रभुपाद को अपने घर के मंदिर कक्ष को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रभुपाद ने प्रवेश किया तो धामजी ने उनके बैठने के लिए मृग चर्म बिछाया। हम मृग चर्म पर नहीं बैठते, प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद बोले, यह शुद्ध है पर हमारे वैष्णव ना उसे धारण करते हैं ना उस पर बैठते हैं, यह योगियों के लिए है। भावानंद, श्रीमान धामजी ने प्रभुपाद के लिए एक सोफे पर बैठने का अनुरोध किया जो साफ सफेद कपड़े से आच्छादित था। प्रभुपाद बैठ गए और उन्होंने उनके चरण धोए। यह पहला अवसर था जब मैंने किसी को प्रभुपाद के चरण प्रक्षालन करते देखा। उन्होंने उनके चरणों को पहले दूध से प्रक्षालित किया और इसके पश्चात जल और गुलाब की पंखड़ियों से। तब उन्होंने चरणों पर चंदन लगाया। उनके बाद लाल कुमकुम, चावल का चूर्ण और मालती के पुष्प चढ़ाए। कुमकुम से उनके अंगूठे लाल हो गए और अक्षतः और नन्हे नन्हे श्वेत मालती पुष्पों से चरण ढक गए। उनके बाद प्रभुपाद ने प्रवचन किया। उसके पहले मैंने गुरु के चरणों को कभी नहीं देखा था। यह मेरा पहला अवसर था जब मैंने अनुभव किया कि गुरु के चरणों का विशेष महत्व होता है और वे विस्मयकारी रूप से सुंदर थे। तो यहां पर प्रभुपाद जी के चरणों की विशेष व्याख्या है, जो व्यक्ति अपने गुरु के चरणों की रज या चरणों की भी सेवा करता है तो वो गुरु के प्रति बहुत आभार प्रकट कर सकता है, वैष्णव के प्रति कर सकता है। अन्यथा अगर व्यक्ति बहुत ही साधारण रूप से लेता है, जैसे तीसरा जो अपराध है क्या है, वैष्णव अपराध, गुरु को साधारण मनुष्य समझना, उनकी अवज्ञा करना, तो जो व्यक्ति साधारण मनुष्य समझेगा गुरु को तभी उनकी अवज्ञा भी करेगा, क्योंकि वो जब गुरु को इतना मान या सम्मान नहीं देगा तो वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा आचरण करेगा वो। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, उनके चरणों के प्रति बहुत आदर सम्मान पेश करता है तो ऐसे व्यक्ति से अपराध होने की बहुत ही कम जो है संभावना रहती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हम्बल है वो डिवोटी कि वो उनके चरणों तक को पूज रहा है। और जब व्यक्ति गुरु से वाद विवाद करता है, बहस इत्यादि करता है या सजेशन इत्यादि देता है तो ऐसा व्यक्ति गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध कर सकता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो जिस प्रकार यहां पर एक उदाहरण के रूप में भवानंद ने देखा कि पहली बार मैंने देखा कि कोई व्यक्ति इस प्रकार गुरु के चरणों को प्रक्षालन कर रहा है, तो एक बहुत सुंदर संस्कार है ये, अभी भी कहीं गांवों में किया जाता है इस तरह। एक बार हम किसी गांव में गए थे तो वहां पर भी भक्त लोग इसी प्रकार सेवा के लिए सामने आए। लेकिन गुरुजन का जो है इसी प्रकार हमें आदर सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद को केवल भारतीयों को धर्मोपदेश देने से संतोष नहीं था, वे अफ्रीकी लोगों को भी देना चाहते थे। भारतीय और अफ्रीकी बिल्कुल अलग रहते थे, किंतु क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भारतीयों का कर्तव्य था कि वे अफ्रीकियों के साथ अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का आदान प्रदान करें। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को जोर देकर कहा कि अफ्रीका में उनका पहला कर्तव्य यह था कि वह अफ्रीका वासियों को कृष्ण भावना भी प्रदान करें, किंतु तुर्की और पाकिस्तान में कटु अनुभव के कारण ब्रह्मानंद स्वामी नैरोबी में सार्वजनिक कीर्तन कराने में हिचकिचाता था। फिर अफ्रीकी लोग अधिकांशतः स्वाहिली भाषा बोलते थे, उनकी संस्कृति भिन्न थी और वे इतने निर्धन थे कि पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से धर्मोपदेश कैसे दिया जाए। भारतीयों तक पहुंचना उनके लिए सरल और स्वाभाविक था, किंतु प्रभुपाद अफ्रीकियों तक पहुंचाना चाहते थे प्रचार को। यह एक अफ्रीकी देश है, उन्होंने सरल भाव से कहा, वे यहां के मालिक हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें धर्म उपदेश दें। प्रभुपाद जिस तरह कृष्ण भावना संबंधी हर मामले में कहते थे, इस मामले में भी उन्होंने दिखा दिया कि यह कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अफ्रीकियों के एक प्रमुख डाउनटाउन क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर का उपयोग किया। उस मंदिर में एक विशाल कक्ष था जिसके दरवाजे व्यस्त सड़क की ओर खुलते थे, और प्रभुपाद ने अपने भक्तों से कहा कि इसी कक्ष में कीर्तन करो और दरवाजे खुले रखो। भक्तों ने वैसा ही किया और 5 मिनट के अंदर कक्ष लोगों से भरना शुरू हो गया। यह नगर का गंदा इलाका था और जो लोग अंदर आ रहे थे वे मैले कुचले तथा अनपढ़ थे, किंतु वे जिज्ञासु थे और प्रसन्नतापूर्वक हंसते, ताली बजाते, नाचते हुए कीर्तन में सम्मिलित होते जाते थे। ब्रह्मानंद स्वामी हाल छोड़कर पास के कमरे में चला गया जहां प्रभुपाद रुके थे। हाल लोगों से भर चुका था। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, किंतु आपका वहां चलना आवश्यक नहीं है, हम स्वतः इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने कहा, मैं जरूर चलूंगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने उन्हें हतोत्साहित करना चाहा। नहीं, मैं चलूंगा, प्रभुपाद ने फिर कहा। क्या मुझे लेकर चल रहे हो? जब ब्रह्मानंद स्वामी ने शिल्प प्रभुपाद के साथ वहां पहुंचा तो हाल कुछ मिनट पहले ही अपेक्षा और अधिक भर चुका था। जब प्रभुपाद छिये प्रकाश वाली व्याख्याशाला से प्रविष्ट हुए तो वे अपने रेशमी केसरिया वेश में अत्यंत तेजस्वी लगे। जब वे आगे बढ़े तो भीड़ और हटती गई और उनके लिए अपने बीच से मार्ग बनाती हुई और अत्यंत उत्सुकतापूर्वक देखती रही। मंच पर बैठकर प्रभुपाद ने कीर्तन की अगुवाई की और भाषण दिया। यद्यपि स्वाहिली भाषी श्रोता प्रभुपाद का व्याख्यान समझने में असमर्थ थे, पर वे श्रद्धापूर्वक बैठे रहे और कीर्तन तो उन्हें बहुत प्यारा लगा। भारतीय समुदाय के लोगों को आशंका थी कि प्रभुपाद अफ्रीकियों के लिए हाल खोल देंगे और कुछ लोग यह देखने के लिए कार्यक्रम में गए थे कि क्या होता है, किंतु प्रभुपाद ने अनुकंपापूर्ण कार्यक्रम को देखकर भारतीय प्रभावित हुए। स्पष्टतः ऐसे सीधे साधे कार्यक्रम में सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ देने की आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रभुपाद ने बारंबार बल दिया कि अफ्रीका में अफ्रीकियों को कृष्ण भावना में प्रदान करना ही ब्रह्मानंद स्वामी का कार्य होना चाहिए और कार्यक्रम को सरल रखना चाहिए। प्रसाद वितरण, मुफ्त पुस्तक वितरण तथा ढोल और करताल के साथ हरे कृष्ण कीर्तन कृष्ण भावनामित को मात्र एक अन्य नैरोबी हिंदू धार्मिक सभा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को चाहिए कि वे धन का दान दें, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी का धर्मोपदेश और सदस्य बनाने का कार्यक्रम अफ्रीकियों के बीच होना चाहिए। जब नैरोबी में कई काले अमेरिकी शिष्य प्रभुपाद से आ मिले तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा, 400 वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वज यहीं के दास बनाकर ले गए थे, किंतु जरा देखो तुम लोग किस तरह स्वामी बनकर वापस आ गए हो। ये वो कुछ दूसरे अफ्रीकी हैं जो पहले वहां से उधर दास बनकर गए थे, लेकिन अब प्रभुपाद जी के साथ हैं तो यहां पर स्वामी के रूप में हैं। प्रभुपाद ने नैरोबी में प्रथम खुले कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया। भक्तजन काम कुंजी पार्क से सबसे बड़े वृक्ष के निकट गए जो केनिया की स्वतंत्रता से जुड़ा था, ऐतिहासिक चिन्ह था। जब वे वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करने लगे तो एक विशाल जन समूह वहां एकत्रित हो गया और बहुत से लोग कीर्तन करने लगे। कुछ लोग तो अपने आदिवासी ढंग से मिलजुल कर नाचने भी लगे। एक युवक आगे बढ़ा और ब्रह्मानंद स्वामी के व्याख्यान को स्वाहिली में अनुवादित करने लगा। वो तैयार हो गया। भक्तों ने मीठी बूंदी बांटी। भीड़ के लोगों को सचमुच आनंद आया। सारा कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। ब्रह्मानंद तेजी से प्रभुपाद के पास आया और उन्हें पार्क में हुए आश्चर्यजनक कीर्तन का विवरण सुनाया। ब्रह्मानंद को वैसे ही उमंग का अनुभव हुआ जैसे कि 1966 में हुआ था, जब उसने न्यूयॉर्क नगर के वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में हुए प्रथम कीर्तन की सफलता का विवरण प्रभुपाद जी को सुनाया था। वर्तमान में जैसा कि तब ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद के आदेशों का पालन किया था और परिणाम में उसे सफलता मिली थी। प्रभुपाद ने अपने निजी उदाहरण से ब्रह्मानंद स्वामी को प्रेरित करके कुछ ही दिनों में अफ्रीका में धर्मोपदेशक बल भारतीयों को बदलकर अफ्रीकियों के पक्ष में कर दिया। यहां पर नैरोबी अफ्रीका और जैसे के देशों में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे देश में भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, देशभक्त हुए, जिन लोगों ने बड़ा कोशिश करी कि देश में, क्योंकि समय जातिवाद का बड़ा प्रभाव था, रंग भेद नीति विश्वभर में चलती थी, तो एक संगठन के अंदर जाने के बाद महात्मा गांधी जी ने देखा और कहा कि आप लोगों ने तो हर जाति के व्यक्ति को एक ही छत के नीचे ला दिया, जबकि बड़े से बड़े समाज सेवक भी कभी ऐसा नहीं कर पाए। मुंह से तो बोलते थे कि हाँ हम सब एक हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आती थी तो कोई भी व्यक्ति ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने उनके कार्य को देखा तो अप्रिशिएट किया। लेकिन यहां पर जो प्रभुपाद जी का कार्य है, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व भर में भी रंग भेद की नीति थी। कहीं पर कोई व्यक्ति काला आ जाए तो गोरे लोग उसको मार देते थे और गोलर व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो वो उसको खदेड़ गया मार देते थे। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने बताते कि एक ऐसे घर की, एक ऐसी छत बनाई, ऐसा घर बनाया जिसके अंदर पूरा विश्व रह सकता है। और हम देख सकते हैं कि आज प्रभुपाद जी की कृपा से साउथ अफ्रीका ही नहीं, दूसरे देशों में भी, पूरे विश्व भर में हर जाति, हर क्रीड, हर बोली, हर भाषा, हर रंग का व्यक्ति आज अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत की छत के अंदर में है, जो कि अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, जो कि जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा यह आंदोलन शरीर के आधार पर नहीं चल रहा, बल्कि आत्मा के आधार पर चल रहा है। और आत्मा कोई काली गेरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होती, इसलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में सफल हुए। यहां पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का भी जो है नाम लिया गया है। हम लोग जब मायापुर जाते हैं तो हम देखते हैं विश्व भर से लगभग 150 से ज्यादा देशों से जब वहां पर भक्त लोग पहुंचते हैं, तो हमारे को 5-6 साल पहले एक मित्र बने हमारे, उनका नाम था नवरत्न दास, कई भक्त लोग जानते हैं, उनका वैसे नाम था नयुमुद्दीन। तो ये भक्त जो हैं अपने साथ 2 मुस्लिम लड़कियों को भी लेकर आए थे जिनका नाम तुलसी और वृंदा रखा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि हम वहां प्रचार करते हैं, तो हमने पूछा कि आप कैसे प्रचार करते हो, आप तो ब्रह्मचारी हो, और उस समय ब्रह्मचारी थे। तो कहते हां बात ठीक है, ऐसे देश में जहां पर कि बहुत मुश्किल है प्रचार करना और नियम कठोर हैं, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का प्रचार करता मिलता भी है तो उसको मार दिया जाता है या जेल में तुरंत डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी हुआ, शायद आगे बताएंगे, जहां पर कि किसी को भी धर्म का प्रचार करने नहीं दिया जाता था और साफ साफ बोल दिया जाता था कि अगर आप कल दोबारा दिखे तो आपको चाकू मार दिया जाएगा या उनके माथे पर जो वैष्णव तिलक है वो मिटा दिया जाता था। तो उन भक्तों ने बताया कि वहां पर भी हम लोग जो प्रचार करते हैं बहुत मुश्किल है, बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनका जो आचरण है उन भक्तों का और जो लोग उनके मित्र होते हैं, तो पहले दिन ही जाके नहीं बोलते कि आइए हमारे इस कार्यक्रम में एक कीर्तन होगा, प्रवचन होगा, नहीं, वो लोग काफी समय तक उनके साथ मित्रता रखते हैं, उनके अच्छे आचरण को देख के वही प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों नहीं खाते और ऐसा क्यों करते। तो वो बताते कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस पुस्तक में मैंने देखा कि ऐसा कुछ लिखा है, ये पुस्तक आप भी पढ़ो। अभी भी नहीं बताते कहां पर जुड़ा हूं मैं किस, तो धीरे धीरे वो पुस्तक पढ़ना शुरू करते, उसके कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के फिर वो उत्तर भी देते थे। और फिर धीरे धीरे जब काफी समय बाद ये पता चलता था कि अब ये कहीं नहीं जाएगा या कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते थे उस जगह पर ले जाकर जहां पर कि और भक्त लोग बैठे, और वहां पर काफी भक्तों की संख्या होती थी जो कि हरे कृष्णा कीर्तन करती थी, भगवद गीता पे लेक्चर होता है और लगभग संख्या बढ़ती जाती है। तो जब हम उनसे पहले साल मिले तो 3 लोग थे वो टोटल, दूसरे साल मिले तो 7 थे, तीसरे में 13 और चौथे साल मुझे 30 लोगों के साथ वो अकेला व्यक्ति देखा जो कि मायापुर में उन सब लोगों को लेकर आए थे। और ये सब लोग दूसरे मूल दूसरे धर्म के लोग थे जिनके सबके नाम बदल दिए गए थे और ये सब अब 16 माला और कृष्ण को ही भगवान मानते थे। तो इतने अच्छे अच्छे प्रचारक प्रभुपाद जी ने जो है तैयार किए इस मूवमेंट के लिए। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं पर आगे नैरोबी से निकलकर, हम इस अफ्रीकी देशों में सभी बुद्धिजीवी अफ्रीकों को आमंत्रित करने आए हैं कि वे हमारे पास आएं और इस विचारधारा को समझें तथा उसका वितरण करें। हम अपना विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम अपना विकास करने का प्रयास कर रहे हो तो ठोस ढंग से विकास करो, किंतु अमेरिकियों और यूरोपियों का अनुसरण मत करो जो कुत्तों और बिल्लियों की तरह रह रहे हैं। ये प्रभुपाद जी उस पाश्चात्य संस्कृति को जो है मखौल उड़ा रहे हैं जो कि केवल भोग के ऊपर आधारित है और नग्नता और ड्रग्स के पीछे भाग रही है। तो प्रभुपाद जी कहते थे उन अमेरिकन्स और यूरोपियंस का जो है उनको फॉलो मत करो जो कि कुत्तों और बिल्लियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती, वहां परमाणु बम पहले से ही तैयार है। जो ही अगला युद्ध आरंभ हुआ कि सारे गगनचुंबी भवन और सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तुम लोग वास्तविक दृष्टिकोण से मानव जीवन को सही पक्ष को समझने का प्रयत्न करो। यह सही दृष्टि कृष्ण भावनामित आंदोलन है और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस विचारधारा को समझने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता तालियां बजाने लगे और प्रभुपाद के सम्मान में खड़े होकर वाह वाह करने लगे। लोगों की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कृष्ण का संदेश उनके हृदय को छू गया था। यह संदेश राजनीतिक, भौगोलिक तथा सामाजिक भेदभाव से रहित होकर समस्त लोगों के लिए था। जब प्रभुपाद पहले नैरोबी हवाई अड्डे पर उतरे थे तो उन्होंने एक संवाददाता को विश्वास दिलाया था कि वे अफ्रीकी लोगों को भी धर्मोपदेश देंगे और अब वे ऐसा कर रहे थे। वे अफ्रीकियों को भी संदेश दे रहे थे और वही भक्ति की विधि बता रहे थे जो उन्होंने अमरीकों को दी थी। जो कुछ अमरीकी चाहते थे और कुछ अफ्रीकी चाहते थे वे केवल कृष्ण भावनामृत से मिल सकता था। कृष्ण भावनामृत कहीं भी कारगर हो सकता है यदि सत्यनिष्ठ और बुद्धिमान लोग आगे बढ़कर उसके प्रसार में योगदान दें। प्रभुपाद का बाहर व्याख्यान देने का कार्यक्रम जारी रहा। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम मंगोलियो में सम्मानित होते समय प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य का एक चित्र दिखाया जिसमें वे अपने भक्तों के साथ नाचते हुए कीर्तन कर रहे थे। भेंटकर्ता ने प्रभुपाद से पूछा कि चित्र में केवल काकेशियन ही क्यों दिखाए गए हैं, भारत में कई रंग के लोग हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया और केंद्र में यह किसका चित्र है। भेंटकर्ता ने पूछा। प्रभुपाद ने कहा यह श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वे भगवान हैं। वे भगवान नहीं हो सकते, उस लंबे स्थूलकाय व्यक्ति ने प्रतिकार किया। वे भगवान हैं यह आपका क्या तात्पर्य है, यह तो एक मानव है, तर चल रहा है। किंतु प्रभुपाद भेंटकर्ता से भी अधिक आक्रामक बन गए। आप क्यों कहते हैं कि वे मानव रूप में नहीं आ सकते, भगवान मानव रूप में क्यों नहीं आ सकता। नैरोबी के एक अन्य व्याख्यान में प्रभुपाद ने बल दिया कि शांति केवल आध्यात्मिक मंच पर संभव थी, केवल कृष्ण भावनामृत वर्तमान गुटों को जोड़ सकता था। उदाहरण के लिए अफ्रीका में भारतीय अपनी विधियों से संतुष्ट हो सकते हैं किंतु अफ्रीकी संतुष्ट नहीं है। इसलिए भौतिक जीवन में यदि एक असंतुष्ट है तो दूसरा संतुष्ट होगा और फलतः अशांति होगी। किंतु यदि आप कृष्ण भावनामृत के मंच पर आते हैं, यदि आप स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाते हैं तो आपका मन आत्मा दोनों परमतः संतुष्ट होंगी। कृपा जी फिलॉसफी दे रहे हैं कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से खुश है, हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसी चीज से दुखी हो। किसी व्यक्ति को अगर फैन तेज चाहिए तो हो सकता है दूसरे को फैन तेज नहीं चाहिए। तो नाना प्रकार के विवाद रहते हैं, इसलिए शांति नहीं रहती। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका सबसे सुंदर तरीका क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाए तो तो उसमें वो व्यक्ति सबको संतुष्ट कर सकता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करता है तो पूरे संसार को तुष्ट कर सकता है, अर्थात संतुष्ट कर सकता है, स्वयं भी तुष्ट होगा और दूसरों को भी तुष्ट करेगा। तो यह सिद्धांत शास्त्रों में दिया गया है। प्रभुपाद ने आगे अफ्रीकों की सहायता के लिए अपनी योजनाएं बताई। हम अफ्रीका में न केवल भारतीयों या हिंदुओं को बल्कि यहां के स्थानीय जनता को भी शिक्षा देने आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भक्त सड़कों पर कीर्तन कर रहे हैं, जैसा कि हम लंदन, न्यूयॉर्क, संसार के सभी बड़े नगरों में करते हैं। हम अपने संकीर्तन दलों को सड़कों से ले जाने का प्रयत्न करते हैं और स्थानीय अफ्रीकी लड़के, लड़कियां और संभ्रांत लोग एकत्र होते हैं। वे इस आंदोलन को स्वीकार करते हैं, एक ऐसी विधि जो कभी किसी ने नहीं देखी और सबसे आश्चर्यजनक विधि है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसका कि लगभग समय है 999 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार जब लगभग 1000 युग बीत जाते हैं तो एक ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और उसी के अगले युग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं तो इस प्रकार की विधि लेकर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जो विधियां थी भगवान को प्राप्त करने की, यज्ञ के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा लोग भगवान को प्राप्त किया करते थे। तो अब जब चैतन्य महाप्रभु ये नाचने वाली विधि लेकर आए, डांसिंग विधि, सड़कों पर नृत्य करना, कीर्तन करना, भगवान के नामों को उच्च स्वर में पुकारना, तो ये एक विधि सबसे अनोखी विधि लगी। लेकिन क्योंकि समाज में ज्यादातर लोग रजोगुण में हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के जो है म्यूजिक और नृत्य जो है ज्यादा पसंद है। तो चैतन्य महाप्रभु एक ऐसी सरल विधि लेकर आए जिससे कि हर व्यक्ति बहुत आसानी से आकर्षित हो जाता। हम आज भी देखते हैं कि जब मंदिर में कीर्तन होता है तो जो व्यक्ति जिंदगी में कहीं ना नाचा हो तो वो भी नाचने लगता है। ऐसा व्यक्ति जिसके घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, ऐसा व्यक्ति भी उछल उछल के नाचने लगता है। सड़कों पर जब हम लोग कीर्तन निकालते हैं तो जो लोग हमारे को रोकना चाहते हैं या जो रोकते हैं या जिनको पसंद नहीं आता तो वो भी ताली बजाते हुए या पैरों को हिलाते हुए नजर आते हैं। हमने देखा है कि इस प्रकार के लोग जो कि बहुत अगेंस्ट हैं इन सब चीजों के, वो लोग भी जब नृत्य करते देखते हैं भक्तों को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी विधि दी, वो भी जो है इसके अंदर आ जाते हैं। और फिर भी इन संकीर्तन आंदोलन को तो कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही समय में चांद काजी के उस जो है उदाहरण में पूरी की पूरी जाति को समझा दिया कि इस हरे कृष्ण आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने रोका तो मुश्किल रहेगा उसके लिए, क्योंकि ये इस युग का युग धर्म है। और ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक युग धर्म है, और युग धर्म में युग धर्म नहीं होगा तो कैसे चलेगा युग में धर्म। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये नाचने गाने वाला मूवमेंट चलाया गया ताकि हर व्यक्ति नाच कूद कर अपने सारे पापों को समाप्त कर वो भगवान से आकर्षित हो जाए। क्योंकि इतने छोटी उम्र में, छोटी उम्र का मतलब है कि इस छोटे से जीवन काल में जो कि 60-70 साल के लिए मिला है, ना हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ना ही यज्ञ इत्यादि के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ना लोगों के पास इतना धन है कि वो बड़े बड़े मंदिर बनाकर उसमें भगवान को हीरा शर्फे इत्यादि जो है अर्पित करें, है ना। खुद तो हम लोग नकली पहनते हैं तो भगवान को असली कहां से देंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सुंदर विधि बनाई कि अगर कोई व्यक्ति खाली घर में खाली बैठा है या कहीं पर भी है तो दो तालियों के साथ भी हरे कृष्णा कीर्तन कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हरे कृष्णा कीर्तन कर सकता है। हम देखते हैं भक्तों को, जो लोग हरि नाम के संग में टच में आ गए हैं, वो भक्तों कहीं पर खाली नहीं बैठना चाहते, उनके पास हमेशा अपना हथियार होता है माया से लड़ने का, बीट बैग हमेशा साथ लेके चलते हैं, और ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी भगवान के नाम का कीर्तन कर सकता है, ये जप कर सकता है। कई परिवारों में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं एकादशी के दिन जो हम भजन पढ़ते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, उसमें बोलते हैं कि जे दिन गृह भजन देखी गोलोक धाय, अर्थात वो दिन क्या बन जाता है, गृह गोलोक धाय, वो भगवान का धाम बन जाता है वो घर, जिस घर में जो है वो हरे कृष्ण कीर्तन करते सुनते हैं। लेकिन जिस प्रकार के एनवायरमेंट में हम पले बड़े हैं तो हमें शुरुआत में बड़ा झिझक होती है, अरे कीर्तन हम क्यों करें, अजीब लगेगा, पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, है ना, शर्माते हैं लोग। लेकिन गोलोक धाम से तुलना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कि अगर घर के सदस्य एक साथ मिलकर बताते ना, दैट फैमिली प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो इकट्ठे मिलकर जो लोग अपने घर में कीर्तन करते हैं उस घर में वो स्वयं गोलोक धाम बन जाता है। सब लोगों का एक ही उद्देश्य होता है क्या, कि भगवान को प्रसन्न करना है। और जब घर के लोग इकट्ठे पूजा अर्चन या कीर्तन करते हैं तो हर एक के मतभेद समाप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं कि जब एक परिवार में लोग रहते हैं और उस परिवार में रहने वाले लोग चाहे दो भाई हों, चाहे बहन और भाई हों, चाहे हस्बैंड और वाइफ हों, चाहे मां बेटा हो, वो लोग भी संतुष्ट नहीं रह पाते। कारण कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं द्वेष है, कहीं ना कहीं आपने सम्मान की बात है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ की इच्छा है, इसलिए संतुष्ट नहीं रह पाते। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण हमारे इस्कॉन मंदिर ही, जहां पर कि एक व्यक्ति नहीं रहता, 50-100 लोग रहते हैं, और ये अलग अलग बोली के लोग हैं, अलग अलग आदतों के लोग हैं, अलग अलग रूप और रंग के लोग हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतने सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने डिजाइन किया है कि यहां पर जो पंचांग भक्ति का अंग सुबह सुबह दिया मंगला आरती से लेकर, इसके अलावा हर व्यक्ति को सेवा में लगे रहने के लिए, उनके लिए धर्म उपदेश इत्यादि, तो जब वो कीर्तन करता है, जैसे सुबह हम लोगों ने देखा होगा गुरु पूजा में मंगला आरती, सुबह से लेकर शाम तक नृत्य करते रहते हैं भक्त लोग। और नृत्य में अकेला नृत्य तो होता ही नहीं ना जी, तो क्या करते हैं भक्त लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य करते हैं। और अगर कहीं किसी का आपस में मतभेद है किसी कारण से, तो वो भी भगवान के कीर्तन में जो है समाप्त हो जाता है, व्यक्ति फिर से इकट्ठे बैठ के प्रसाद पाते हैं। तो जब प्रसाद पाते हैं, वितरित करते हैं, तो उसमें भी भक्त लोग खूब आनंद उठाते हैं। क्लास में, कक्षा में बैठते हैं तो कक्षा में भी इकट्ठे बैठना, तो हर समय भक्तों का संघ क्योंकि उपस्थित है और इन सब गतिविधियों में कृष्ण उपस्थित हैं, तो इसलिए यहां पर मतभेद नहीं रहते, इसलिए यहां पर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं रहती। अगर यही विधि हम अपने घरों में करें जब 4, 2, 6 लोग रह रहे हैं, तो क्या वहां शांति नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? वहां भी शांति आएगी, वहां भी सुख बढ़ेगा, वहां भी लोग संतुष्ट होंगे। समस्या क्या है कि हम लोगों ने अपने दैनिक दिनचर्या से कृष्ण को निकाल दिया है। अब घर में म्यूजिक बजता है लेकिन वो बजता है किसी और का, सिबा का टॉप 10 ऐसे कुछ बजता होगा ना, उन सॉन्ग्स पर नाचने की कोशिश करते हैं। अब भगवान नहीं है केंद्र बिंदु, धन केंद्र बिंदु है घर का, तो इसलिए जब धन केंद्र बिंदु है या मटेरियल सॉन्ग्स केंद्र बिंदु है, तो वहां पर फिर सुख और शांति नहीं हो सकती। तो जिन परिवारों में कीर्तन होता है, अगर किसी को नहीं भी आता, गला अच्छा नहीं है, क्या दिक्कत है? भगवान को अच्छा सुर नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा मूर्खो वदति विष्णाय, शास्त्रों में कहा गया धीरो वदति विष्णवे उभयस्तुम सुमम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कोई कैसा भी बोले, विष्णु बोले, विष्णाय बोले, प्रोनाउंसिएशन गलत हो, नो प्रॉब्लम। आज चाइनीज जो जप कर रहे हैं उनका जप सुना है आप लोगों ने? वो रा नहीं बोल सकते, रा की जगह ला बोलते हैं, हले लाम लाम बोलते हैं, लेकिन भगवान को मालूम है ये मेरा नाम पुकार रहे हैं, उन्हें मालूम है कि इनके हृदय में क्या है, तो भगवान स्वीकार करके उनको भी जो है उनका भी हृदय शुद्ध कर देते हैं। पूरे विश्व भर में अब हमारा जो शब्द है ये कृष्ण शब्द कहां बोल पाते हैं लोग कहीं, लेकिन भगवान को मालूम है मुझे पुकार रहे हैं। जिस प्रकार एक बच्चा तोतली भाषा में अपने माता पिता को पुकारता है तो माता पिता को प्रसन्न होते हैं वो लोग, उसी प्रकार जब पूरे विश्व भर में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग भाषा के लोग भगवान का नाम पुकारने का प्रयास करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हो सकता है किसी का गला अच्छा ना हो, गा सकता ना हो, ताल खराब हो, सुर बेकार हो, लेकिन फिर भी ताली बजा के अगर वो कीर्तन करता है किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो घर भी क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन धाम। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि जहां भी जाते थे कीर्तन, संकीर्तन, धर्म उपदेश, ये हमेशा चलता था। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि अगर हम कृष्ण भावना भावित बने रहना चाहते हैं तो इन गतिविधियों को अपनाना पड़ेगा जो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन आचरण से दिखाई। यहां तक कि घर में या मित्रों में या संबंधियों में जो बात करने का टॉपिक भी होना चाहिए वो भी कृष्ण भक्ति का होना चाहिए। जब भक्तों को मिलते हैं या घर में 4 सदस्य हैं, सबको चाहिए कि वो क्या करें, अपनी अपनी कोई बुक जो पढ़ रहे हैं उसमें से रोज कुछ ना कुछ पढ़ें और शाम को जब टेबल पर मिलें तो उसकी चर्चा करें कि हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या समझ आया। तो जब इस प्रकार की बातचीत शुरू होगी, नहीं तो क्या होता है, शाम को मिलते हैं लेकिन चर्चा किसकी होती है? आज प्रॉब्लम ये हो गई, आज पेमेंट नहीं मिली, आज उसने ये कह दिया, तो इस प्रकार की बातों के लेकर हम बैठते हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं से क्या होता है कि कहीं कृष्ण उपस्थित नहीं, लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार का नियम बना लें कि शाम को जब भी घर आएंगे, मिलेंगे, इस प्रकार की चर्चा करेंगे, मित्रों से जब मिलेंगे तो कृष्ण भावना भावित बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है वो जो भगवान ने बोली है मच्छिदा मदगद प्राण बोधयंता परस्परम कथनक्ष जन माम नित्यम तुष्यंति च रमंत। मेरे भक्त लोग मेरे विषय में चर्चा करते हैं परम सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। तो भक्त लोग जब इस प्रकार की आदत बनाएंगे तो उनके अंदर भी वो परम सुख और आनंद की अनुभूति होगी। तो प्रभुपाद जी यहां इस पूरे प्रसंग में बताना चाह रहे हैं कि उनका जो धर्म उपदेश देने का जो इच्छा है वो उसे कहीं दूर नहीं है, चाहे स्वास्थ्य ठीक हो चाहे नहीं। प्रभुपाद जी प्रचार करना चाहते हैं, अपने भक्तों को इंस्पायर करना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं ताकि वो, क्योंकि ये समुदाय, ये जो आंदोलन है ये टेम्पररी आंदोलन नहीं, कुछ समय के लिए नहीं। हम जैसे देखते हैं आए दिन कोई भक्त आते हैं हमारे पास, प्रभु जी हमने देखा कि आजकल ये व्यक्ति बहुत छाया हुआ है मार्केट में, है ना, इसके सुबह शाम टीवी पे लेक्चर आ रहे हैं, हजारों लोग इसे दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम जो है टेम्पररी है, एक व्यक्ति आएगा उठेगा, बाद में उसकी चीजें पकड़ी जाएंगी, फिर जेल में मिलेगा, फिर एक व्यक्ति आएगा कोई नया कंसेप्ट निकालेगा, लोग उसे दीक्षा लेंगे, फिर पता चलेंगे वो उसका फॉलोअर हो गया। तो नाना प्रकार के लोग उठेंगे, कुछ समय के लिए दिखेंगे, लेकिन उसके बाद 10 साल 20 साल 30 साल बाद उनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। लेकिन ये आंदोलन जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एम्पावर्ड है, सुपरवाइज भी किया जा रहा है, ये लगभग 10,000 सालों तक रहना है। तो यहां पर इस मूवमेंट में जो लोग जुड़ेंगे, सुमेध दशा शब्द इस्तेमाल हुआ है, अर्थात बहुत ही बुद्धिमान कहलाएंगे, और ये सब भक्त लोग अपने जीवन में इस जो टेम्पररी हमारा जो जीवन है इसमें भगवान की भक्ति कर वापस भगवान के धाम जा सकेंगे। ये मूवमेंट इसलिए है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, प्रभुपाद लीलामृत की, एकादशी महामहोत्सव की, नेताए गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई टिप्पणी या जिज्ञासा तो मैं पूछना बता सकता।